ಹರಿ. ರಾಧ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ಬಿಹಾರಿ, ಗೋಪಿ ಜನವಲ್ಲಭ ಗಿರಿವರಧಾರಿ, ಗೋಪಿ ಜನವಲ್ಲಭ ಗಿರಿವರಧಾರಿ, ಯಶೋದಾನಂದನ ವ್ರಜ ಜನರಂಜನ, ಯಶೋದಾನಂದನ ವ್ರಜ ಜನರಂಜನ, ಯಮುನಾ ತೀರವನಚಾರಿ, ಯಮುನಾ ತೀರವನಚಾರಿ, ಜಯ ರಾಧ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ಬಿಹಾರಿ, ಜಯ ರಾಧ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ಬಿಹಾರಿ, ಜಯ ರಾಧ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ಬಿಹಾರಿ, ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯಂ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತೀಂ ವ್ಯಾಸಂ ತತೋ ಜಯ ಮುದೀರಯೇ. ನಷ್ಟಪ್ರಾಯೇಷು ಅಭದ್ರೇಷು ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವಯಾ. ಭಗವತೀರುತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕೇ ಭಕ್ತಿರ್ಭವತಿ ನೈಷ್ಟಿಕೇ. ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ದೇವಕೀ ನಂದನಾಯ ಚ ನಂದಗೋಪಕುಮಾರಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ.
ಗದ್ಯ ಮೇಲೆ
ಪರಿಜನಾನುರಾಗ ವಿಚರಿತಾಶ್ ಶಬಲ ಸಂಶಬ್ದ ಶಲಿಲ ಸೀತ ಕಿಶಲಯ ತುಲಸಿಕಾ ದುರ್ವಾಂಕುರೈರಪಿ ಸಂವೃತ್ತಯ ಸಪರ್ಯಯ ಕಿಲ ಪರಮ ಪರಿತುಷ್ಯಸಿ. परिजन, आप दोहरा सकते हैं, परिजन आपके सेवकों द्वारा अनुराग अत्यंत आह्लाद से विरचित की गई शबल गदगद वाणी से समशब्द स्तुति से सलिल जल शीत किसलय नव कपोलोक के नव कोपलोक से युक्त वृंत पल्लव तुलसिका तुलसी दल दुर्वांकुरई नई उगी दूब से अपि भी संभृतया किया गया समर्पया पूजा द्वारा किल निस्संदेह परम हे परमेश्वर परितुष्यसी संतुष्ट हो जाते हो। अनुवाद और तात्पर्य इस भक्तिदान स्वामी शिल प्रभुपाद के द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। हे परमेश्वर आप सभी प्रकार से पूर्ण हैं। जब आपके भक्त गदगद वाणी से आपकी स्तुति करते हैं तथा आह्लादवश तुलसी दल जल पल्लव तथा दूब के अंकुर चढ़ाते हैं तो आप निश्चय ही परम संतुष्ट होते हैं। तात्पर्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए न तो प्रचुर धन की आवश्यकता है न शिक्षा या ऐश्वर्य की। यदि कोई प्रेम तथा आह्लाद पूर्वक उनमें पूर्णतया मग्न रहे तो केवल कुछ पुष्प तथा जल चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। यदि कोई प्रेम तथा भक्तिवश मुझको पत्ती फूल फल या जल अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। भगवान को केवल भक्ति से प्रसन्न किया जा सकता है। इसीलिए यहाँ यह कहा गया है कि ईश्वर केवल अनुराग भक्ति से प्रसन्न होते हैं। हरि भक्ति विलास में गौतमीय तंत्र का निम्नलिखित उद्धरण आया है तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विक्रीणिते स्वम आत्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सला। श्री कृष्ण केवल तुलसी दल तथा अंजुली भर जल चढ़ाने वाले भक्त के हाथों बिक जाते हैं क्योंकि वे अपने भक्तों के प्रति परम वत्सल है। भगवान की अपने भक्तों पर अहितुकी कृपा रहती है। अतः निर्धन से निर्धन व्यक्ति जो भक्तिवश थोड़ा सा जल तथा एक पुष्प भी उन पर चढ़ाता है उससे वे प्रसन्न हो जाते हैं। अपने भक्तों के प्रति उनकी वत्सलता के कारण ही ऐसा होता है। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वप्रदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथां नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो विष्णुवादाय कृष्णभृष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्वसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यस्य कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों से मैं आशीर्वाद की याचना करता हूँ कि मैं भागवतम के इस विषय पे कुछ यहाँ पे कह सकूँ। तो बहुत दिनों के बाद ऑनलाइन से इनलाइन क्लास हो रहा है, हमेशा ऑनलाइन था अभी तो जैसे कि हमें पता है यहाँ पे नाभि महाराज यज्ञ कर रहे हैं और उसमें भगवान साक्षात वहाँ पे प्रकट हुए हैं। तो यहाँ पे जो बाकी ब्राह्मण हैं जो यज्ञ कर रहे हैं तो वो प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं भगवान को। तो उसमें से ये प्रार्थना है जहाँ पे वो कह रहे हैं कि आप तो थोड़ा सा आपको जल या तुलसी भी अर्पण करेंगे तो आप प्रसन्न हो जाते हैं, इतने बड़े बड़े यज्ञ करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी भी कोई भक्ति करता है तो उससे आप प्रसन्न होते हैं। तो ये श्लोक है यहाँ पे। तो हम देखेंगे कैसे बाय लिटिल डिवोशनल सर्विस एंड बाय लविंग डिवोशनल सर्विस लॉर्ड गेट्स प्लीज्ड। तो लिटिल डिवोशनल सर्विस से भी भगवान प्रसन्न होते हैं और लविंग डिवोशनल सर्विस से भी, लेकिन अलग अलग डिग्री में। तो कोई भगवान की थोड़ी सी भी सेवा करता है तो भगवान प्रसन्न होते हैं, लेकिन कोई प्रेममयी सेवा करते हैं लविंग डिवोशनल सर्विस उससे भगवान और ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो दोनों के हम थोड़े बहुत उदाहरण देखेंगे। तो लिटिल डिवोशनल सर्विस, तो जैसे हमें पता है नरसिंह पुराण में जो प्रह्लाद महाराज की कथा आती है उनके पूर्व जन्म की, तो कैसे वो एक बार जंगल से जा रहे थे और बहुत थक गए थे तो एक मंदिर में रुके थे और वहाँ पे उन्होंने वो मंदिर साफ किया था। तो वो थोड़ी सी सेवा के कारण उनको बाद में एक प्रह्लाद महाराज यानी एक शुद्ध भक्त भगवान के ऐसा एक जन्म मिला। तो उन्होंने थोड़ी सी सेवा की थी, लिटिल डिवोशनल है। या हम देखते हैं कि अजामिल ने भी भगवान का नाम लिया एक बार तो उनके लिए साक्षात विष्णुदूत आए और उनको यमदूतों से बचा लिया। या हम देखते हैं कि जो नारद मुनि का पूर्व जन्म फिर से, वो कैसे एक शूद्र के घर में जन्म लिया था उन्होंने और जो भक्ति वेदांतिस्ट आए थे उनको उन्होंने अच्छी तरह से उनकी सेवा की और उसके वजह से उनको अगला जन्म नारद मुनि का मिला। या फिर पूतना का उदाहरण देखते हैं कि पूतना भी जो आई थी भगवान को मारने के लिए, लेकिन भगवान ने क्या देखा कि वो मुझे एक बेटे के रूप में स्वीकार कर रही है अपना दूध पिला के, तो उसके वजह से भगवान ने उनको धात्री का रूप एक पोजीशन दिया। तो ऐसे कोई भी छोटा थोड़ा भी भक्ति करता है तो भगवान याद रखते हैं, भगवान उससे प्रसन्न होते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। जैसे श्लोक आता है 2.40, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रद्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। तो कोई थोड़ा सा भी भक्ति करता है तो वो भगवान उसकी रक्षा करते हैं। बाय लिटिल डिवोशनल सर्विस ऑल्सो लॉर्ड इज प्लीज एंड लॉर्ड प्रोटेक्ट्स सच डिवोटी। तो एक इंसिडेंस बताना चाहता हूँ कि कैसे थोड़ी सेवा करने से भी भगवान ऐसे भक्त को बचाते। तो जब मैं मुंबई में था जॉब करने के लिए 2005-2006, तो उस समय एक बार मैं और कृष्णोलोक प्रभु हम साथ में जॉब करते थे। तो शाम के समय ऐसे ही हम जब निकल रहे थे कंपनी से घर जाने के लिए, तो तभी हमारे जो प्रोजेक्ट मैनेजर थे वो आके उन्होंने बोला कि आज घर मत जाओ। मैंने बोला क्यों? तो उन्होंने बताया आज मुंबई में 7 ट्रेन्स में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, 7 ट्रेन्स लोकल ट्रेन्स, तो बाद में जाओ, रात में थोड़ा सा लेट, और डायरेक्ट कैब करके जाओ। तो फिर हम ऑफकोर्स बाद में गए कैब करके डायरेक्ट, तो लोकल ट्रेन अवॉइड करो करके। तो उस दिन क्या हुआ था, शाम को 11 जुलाई 2006, आपको याद होगा हम मुंबई में थे तभी। तो जो टेररिस्ट थे उन्होंने 7 ट्रेन्स में एक प्रेशर कुकर में RDX भर के लोकल ट्रेन्स में रखा था और इवनिंग के 6:30 के आसपास उसको उड़ाया था। तो अलग अलग स्टेशन पे वो तो करीब करीब 200 लोग उसमें मर गए थे और दैट वाज अ बिग इवेंट। तो हम सब डरते थे लोकल ट्रेन में जाने के लिए। तो फिर बाद में हम मंदिर गए थे राधा गोपीनाथ में, तो हमको पता चला कि एक भक्त की कहानी। तो एक नया भक्त था जो जस्ट भक्ति में आया था, वो चैंटिंग वगैरह कर रहा था, तो वो उस दिन एक ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था लोकल ट्रेन में। और वो शाम को आ रहा था इवनिंग में, तो वो ट्रेन में चढ़ा और फिर बैठ के कॉर्नर में बैठा था ऐसे एकदम, और बीड बैग लिया हाथ में जब करने लगा। तो हमें पता है कि जब हम जब शुरू करते हैं तो कौन प्रसन्न होता है, निद्रा देवी प्रसन्न हो जाती। तो जब करते करते हरे कृष्णा सो गए। तो फिर उस टाइम पे 6:23 टाइम था, उसी बोगी में बॉम्ब था। तो राइट टाइम पे वो फट गए। तो जो बॉम्ब ब्लास्ट का इतना इफेक्ट था, आप देखेंगे नेट पे, वो तो ट्रेन का पूरा ये छत इधर उधर वो सब लोखंड यानी आयन कर रहता है, तो वो फटा था। कई कई जगह पे तो ऊपर का जो वायर्स रहते हैं ट्रेन के वो टूट गए थे, और वायर किसी पे गिर के 25,000 वोल्ट्स कुछ लोग। इट वॉज लाइक हॉरिबल। तो ये जो भक्त था जो बैठा था चैन वो सो गया, और जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो जग गया वो। जगना ही पड़ेगा ना। देखो भगवान जगाने के लिए क्या क्या करते वक्त। वो हमारा कंक्लूजन नहीं है। तो फिर वो जग गया और देखा कि उसको समझा नहीं क्या हुआ, ये देखा कि कई सारे लाशें पड़ी थी और इतना खून, ये लाश, बाप रे। तो डर गया, वो नजदीक ही था बॉम्ब, तो वो सोचे इतने लोग मर गए लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। तो बाद में उसने देखा जैसे बॉम्ब जो फटता है तो उसमें स्प्लिंटर्स होते हैं, स्प्लिंटर्स यानी वो बॉम्ब के टुकड़े, वो बुलेट की तरह लगते हैं, मेटल होता है ना पूरा। तो ये जो भक्त था वो ऐसे चैंटिंग करते करते सो गए, तो वो बॉम्ब के टुकड़े ऐसे उसको पीछे, अच्छा था तो वो सो गए तो इधर लगे। उसने देखा कि अरे बोल, तो अगर वो जप करता ऐसे बैठ के तो उधर से बैक टू गॉड हेड चला जाता। तो ये सच घटना है, हमको बाद में पता चला। तो देखो, कोई भक्त थोड़ी भी सेवा करते हैं तो सो रहा है लेकिन जप में सो रहा है, तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं। ये कंक्लूजन है हमारा, लिटिल डिवोशनल सर्विस नेहा विक्रमो नाश्वस्ति। तो ऐसे वो भक्त की कहानी जो फिर बाद में पता नहीं, वो जब मैं सोता है नहीं लेकिन उसका नींद उड़ गया रहेगा शायद। तो भगवान रक्षा करते हैं। तो लेकिन नेक्स्ट वर्स में भगवान 2.40 में, जैसे नेहा विक्रमो नाश्वस्ति, देन 2.41 में व्यवसायात्मिका बुद्धि एक है कुरु नंदना बहु शाखा ही अनंतस्य बुद्धयो अव्यवसायी नाम। तो उसमें भगवान कहते हैं कि ठीक है, थोड़ी सी भक्ति करता है कोई तो मैं उसकी रक्षा करता हूँ, लेकिन अगर आपको मुझे प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा, व्यवसायात्मिका बुद्धि, यानी पूरे फोकस से भक्ति करना पड़ेगा। तो अगर भगवान की प्राप्ति करना है तो सिर्फ लिटिल डिवोशनल सर्विस इज नॉट इनफ, लविंग डिवोशनल सर्विस इज रिक्वायर्ड विथ कंप्लीट फोकस। तो फिर लविंग डिवोशनल सर्विस में कौन से एग्जाम्पल है, हम देखते हैं कि कैसे। तो सुदामा है, उसने भगवान की भक्ति की और भगवान ने उसको इतना ऐश्वर्य दिया। द्रौपदी ने जब भगवान की उंगली कटी थी तो अपने साड़ी के टुकड़े से वो बांधा था, तो भगवान ने उनको अनलिमिटेड साड़ी दी। और जो वृंदावन के जो फल बेचने वाली थी, उसने भगवान को कुछ फल दिए और भगवान ने उसको टोकरी भर के इतने सारे हीरे दिए। तो ये दोनों में हम डिफरेंस देखते हैं, पहले वाले एग्जांपल और दूसरे। पहले था लिटिल डिवोशनल सर्विस, भगवान उसका फल भी देते हैं। लविंग डिवोशनल सर्विस, उसका भी फल देते हैं लेकिन दैट लविंग डिवोशनल सर्विस इज मोर प्लीजिंग टू द लॉर्ड। तो मैं हाल ही में एक कविता लिख रहा था मेरे दूसरे किताब के लिए, वंशीदास बाबाजी महाराज के ऊपर। तो काफ़ी सारे उनके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट किया था। तो भक्ति विकास महाराज का एक बुक है, उन्होंने लिखा है, तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही अलग अलग इंसिडेंसेस है महाराज के, वंशीदास बाबाजी महाराज के। जैसे सरलक्षण प्रभु ने कुछ बताए थे तो काफ़ी एकदम, तो एक वो आइडियल एग्जाम्पल है जो कि भगवान की प्रेममयी सेवा कैसे करते थे वंशीदास बाबाजी महाराज। तो एक पैराग्राफ है छोटा, उसमें से मैं पढ़ता हूँ। वंशीदास बाबाजी महाराज डिड एवरीथिंग स्लोली लविंगली, कंटेम्पलेटिंग ऑल द टाइम द लीला ऑफ राधा कृष्ण और गौर निताय एंड सिंगिंग और टॉकिंग टू देम। इट वॉज ओनली लेट इन द इवनिंग दैट ही कुड कुक एंड ऑफर भोगा टू द डीटीज। ही हैड नो कॉन्शियसनेस ऑफ टाइम, मॉर्निंग एंड इवनिंग, डे एंड नाइट had no meaning for him. Almost the whole night he kept awake, talking and singing. तो उनका भक्ति क्या था, कि भगवान के साथ बातचीत कर रहा, रात हो या दिन हो बातचीत करते थे भगवान के साथ, गाते थे और कभी कभी भोगा भी बना लेते थे और वो भी शाम तक। इतना वो धीरे से सब कुछ करते थे कि वो शाम तक बन जाता था और फिर वो ऑफर करते थे। तो ऐसे उनका जो जीवन है, एक जो प्रेममय सेवा है, लविंग डिवोशनल सर्विस, उसका एक आदर्श उदाहरण है। तो एक बार वो कभी कभी ऐसे वो खिचड़ी भी बनाते थे भगवान के लिए ऐसे बर्तन में, और तो हम ऑफकोर्स इमिटेट नहीं कर सकते अभी, और वो साथ ही में एक दातून से ब्रश भी करते थे, अपना नीम का दातून बड़ा, उससे ब्रश करते थे और खिचड़ी भी पक रहा है। और फिर अभी खिचड़ी को हिलाना है तो वही दातून लेते थे, उसको हिला देते। स्पेशल चम्मच नहीं था उसके लिए कुछ, और वो भगवान लेते थे। लविंग डिवोशनल सर्विस, यू शुड नॉट इमिटेट। लेकिन ऐसे कुछ कुछ इंसिडेंस है। तो वो बुक अच्छा है बहुत, भक्ति विकास महाराज के आप पढ़ेंगे तो। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो कि बहुत अगेंस्ट थे बाबाजी, कोई बाबाजी था तो वो उनको डिफीट करते थे, उनको अच्छा नहीं लगता था, लेकिन ये तीन बाबाजी थे जिनको वो मानते थे। कौन से, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, वंशदास बाबा जी महाराज, इन तीन बाबा जी महाराज को ही मानते थे, बाकी किसी को नहीं मानते थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो कभी कभी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और भक्ति विनोद ठाकुर उनको मिलने जाते थे, वंशदास बाबा जी महाराज को। तो जब वो देखते थे तो बोलते थे, देखो दो मंजरी आ रही है, मंजरी, और डायरेक्ट उनका स्वरूप देखते थे, दो मंजरी आ रहे हैं तो पीछे से राधा रानी भी आती होंगी, ऐसे बोलते थे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर उनको मिलने जाते थे, लेकिन वो भी थोड़ा दूर से ही, ज़्यादा भी नहीं जाते थे नज़दीक। और उन्होंने अपने शिष्यों को बोल के रखा था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कि ज़्यादा उनके नज़दीक मत जाओ, क्योंकि आप अपराध करेंगे, उनकी जो प्रेम और भक्ति है वो आप समझ नहीं पाओगे। तो एक एक डिसाइपल थे उनके, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के, जातिशेखर प्रभु, जातिशेखर प्रभु। तो वो उनके लिए सब देने जाते थे, ग्रोसरी वगैरह उनको रेगुलरली सप्लाई करते थे गौड़िया मठ से। तो ये इनके डिसाइपल, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के डिसाइपल, उनके पास जाते थे और थोड़ी बहुत सेवा भी करते थे। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा था कि ज़्यादा नज़दीक मत जाओ उनके, थोड़ा वो देखे, थोड़ी बहुत सेवा कर सकते लेकिन फिर से आ जाना। तो एक बार जातिशेखर प्रभु उनकी सेवा कर रहे थे, वंशदास बाबा जी महाराज की, और उनकी सेवा वगैरह की, और फिर बाद में निकल रहे थे वहाँ से, कुछ दिन वहीं पर रुके थे एक्चुअली, और फिर कुछ दिनों के बाद वो फिर से आ रहे थे गौड़िया मठ में। तो उन्होंने सोचा कुछ तो प्रश्न पूछते हैं उनसे, इतने बड़े महाराज है ना, बाबा जी महाराज, थोड़ा प्रश्न हमें भी रहता ना, कुछ प्रश्न बड़े व्यक्ति आते हैं। तो अभी बाबा जी महाराज का नेचर कैसा है, वो कभी भी कुछ भी हो सकता है ना, कुछ प्रेडिक्टेबल नहीं। और वो बात भी कभी कभी ऐसे करते थे, कोई व्यक्ति आया, उनसे बात किया, कुछ पूछा, तो ऐसे कुछ एक स्टेटमेंट बोले गए, फिर दूसरा स्टेटमेंट विच इज़ डिसकनेक्टेड, वो पहले स्टेटमेंट और दूसरे स्टेटमेंट में कुछ कनेक्शन नहीं रहता था, फिर तीसरा स्टेटमेंट कुछ अलग ही होता था, फिर चौथा कुछ अलग ही, तो उसमें कुछ ऐसा फ्लो नहीं होता था, ये ऐसा है, फिर ये ऐसा करो, फिर ऐसा करो, फिर ऐसा होगा बस। तो ये जातिशेखर प्रभु को पता था, लेकिन फिर भी वो सोचे कि पूछते हैं। तो उन्होंने पूछा कि चंद्र की जाए, श्री गौरताय की जाए, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की। तो उन्होंने पूछा उनको जाते जाते कि व्हाट साधना शुड आई परफॉर्म टू अचीव परफेक्शन, कि मैं मेरे जीवन में कैसी साधना करूं जिससे मैं भगवान की प्राप्ति कर सकूं। ऐसा जातिशेखर प्रभु ने वंशदास बाबा जी महाराज को पूछा। तो वंशदास बाबा जी महाराज ने उनकी तरफ देखा भी नहीं, गौर निताई की तरफ देखा और उनको प्रश्न पूछा गौर निताय को। फिर गौर निताय ने कुछ तो आंसर दिया, उनके पास गौर निताय, गदाधर और राधा कृष्ण और गोपाल, ऐसे डीटीस थे। तो उन्होंने पूछा गौर निताय को और कुछ तो, फिर वो बोले उनको, इंग्लिश में होता था पहले, बोले नहीं उनकी तरफ देखा नहीं, ऐसे गौर निताय की तरफ देखते बोले, देयर इज अ ट्री ऑन द सैंड बीच, देयर इज अ ट्री ऑन द सैंड बीच एंड समटाइम्स द ओशन वेव्स कम एंड ड्राउन द ट्री। नारद मुनि केम एंड आस्क द ट्री व्हाट यू आर गोइंग टू डू। द ट्री सेड, आई एम गोइंग टू बिल्ड अ डैम ऑफ सैंड। हो गए, आंसर हो गए। कहते वो जातिशेखर बोलते, प्रश्न पूछा मैंने, क्या आंसर दिया, स्टोरी कहाँ पे, कौन से पुराण में है, स्टोरी है या नहीं क्या। तो हिंदी में क्या, एक पेड़ है बीच, बीच के ऊपर, ओशन बीच, क्या बोलते बीच को, समुद्र किनारा, सैंड बीच, वहाँ पे एक पेड़ है और कभी कभी जो लहरें आती है समंदर की वो पेड़ को डुबा देती है, और नारद मुनि आते हैं और पेड़ को पूछते हैं तुम क्या करने वाले हो, पेड़ क्या बोलता है, मैं रेती का डैम बांध बनाने वाला। हो गया, आंसर हो गया उधर। जातिशेखर प्रभु क्या, अभी क्या बोलने का, क्या है क्या आंसर, और पूछने का डेयरिंग भी नहीं था कि क्या इसका मतलब बताओ करके। तो फिर वो आए फिर से गौड़िया मठ में, और फिर बाद में भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर को पूछा, मैंने ऐसा ऐसा पूछा और उन्होंने ऐसा उत्तर दिया, इसका मीनिंग क्या है, एग्जैक्टली क्या है, कोड लैंग्वेज है, एक शुद्ध भक्त दूसरे शुद्ध वो ही समझ सकते हैं। तो फिर भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर ने कहा कि आपने पूछा कि क्या साधना करनी चाहिए भगवान की प्राप्ति के लिए, तो उन्होंने कहा ये जो पेड़ है ट्री वृक्ष वो एक जीवात्मा की तरह है, और जो समंदर है वो माया की तरह है, और जो नारद मुनि एक शुद्ध भक्त है, तो क्या है जो जीवात्मा है वो तटस्थ है तो माया कभी कभी आती है और उसको डुबा देती है, माया की लहरें बहुत स्ट्रांग है। तो जो नारद मुनि पूछते हैं कि क्या करने वाले हो इसके बारे में, तो वो क्या बोलते हैं पेड़ की, मैं एक आई एम गोइंग टू बिल्ड अ डैम ऑफ सैंड, डैम ऑफ सैंड बना के ओशन की लहरें रुक नहीं सकती, डैम ऑफ सैंड है तो ये नो मैच फॉर द वेव्स ऑफ ओशन। तो जो साधना आप बोल रहे हो, आप साधना कौन सी साधना, वो कैसे है डैम ऑफ सैंड की तरह, वो आपको माया से नहीं बचा सकती, आपको एक शुद्ध भक्त की कृपा चाहिए, वही आपको माया से बचा सकती, उससे ही भगवत प्राप्ति हो सकती। योर साधना इज जस्ट लाइक द डैम ऑफ सैंड, इट कैनॉट सेव यू फ्रॉम द ओशन वेव्स। तो ये उसका अर्थ था, ये भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर ने को बताया। तो ऐसे ऑफकोर्स साधना इज, साधना करनी चाहिए ताकि शुद्ध भक्त की कृपा मिले हमें, ऐसे नहीं कि, लेकिन तो ये आंसर डायरेक्ट गौरनीता ऐसे आया था और उन्होंने डायरेक्ट उनको बताया। तो ऐसे वंशीदास बाबा जी महाराज उनका स्तर अलग ही था। तो एक लविंग डिवोशनल सर्विस कैसे है आइडियल, उनके उदाहरण से और कई सारे उनके पास टाइम्स है। तो जैसे भागवतम में श्लोक आता है, यत्पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या कर्माशयन ग्रथितम उद्ग्रतयन्ति संता तद्वन्न रिक्तमतयो यतयोपि रुद्धा श्रोतो गणस्तम अरणम भज वासुदेवम। तो यहाँ पे जो चतुष्कुमार है वो पृथु महाराज को कह रहे हैं कि कैसे ज्ञानी योगी कर्मी जो है कितना भी करे वो माया से बच नहीं सकते, केवल भक्ति से ही भगवान को हम प्रसन्न कर सकते हैं, केवल प्रेममय भक्ति से ही भगवान प्रसन्न होते हैं, ऐसे वो चतुष्कुमार पृथु महाराज को कहते हैं। तो ये जो लविंग डिवोशनल सर्विस है इस स्तर पे हमें धीरे धीरे आना चाहिए। पहले तो हम लिटिल डिवोशनल सर्विस पे रहते हैं, लेकिन फिर लविंग डिवोशनल सर्विस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वी शुड कम टू दैट स्टेज ऑफ लविंग डिवोशनल सर्विस, भगवान की प्रेममयी सेवा जो है उससे भगवान ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो एक बार श्रील प्रभुपाद एक मंदिर गए थे, तो उधर श्रील प्रभुपाद ने देखा कि भक्त जो ऑफरिंग करते हैं भोग लगाते हैं भगवान को, तो उन्होंने देखा जब भोग जब बाहर आया प्रसाद, तो उन्होंने देखा कि ये यहाँ पे एकदम छोटी छोटी कटोरी में ऑफर कर रहे हैं, इतना छोटा कटोरी में दाल राइस, इतना छोटा छोटा छोटे प्लेट में। तो प्रभुपाद बोले ये क्या कर रहे हो भगवान को ऐसे इतने छोटे छोटे इसमें। तो भक्त बोले हम वात्सल्य रस में भगवान को भोगा लगाते हैं, भगवान छोटा 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 खाते हैं, थोड़ा ही खाता है। प्रभुपाद बहुत गुस्सा हो गए, बोले यू फूल, ये भगवान को अच्छी तरह से खिलाओ, जैसे आप किसी व्यक्ति पे प्रेम करते हो तो उसको कैसे अच्छे से खिलाओगे, वैसे भगवान को खिलाओ, जस्ट लाइक यू सर्व अ पर्सन हुम यू लव द मोस्ट, हाउ यू विल सर्व हिम, वैसे छोटे छोटे इसमें क्यों दे रहे। भक्त ने बोला ठीक है। फिर अगले टाइम जब प्रभुपाद आए फिर से मंदिर में, तो देखा कि अच्छी तरह सर्विंग कर रहे हो, भोग लगा दिया पुजारी ने अंदर जाके, और फिर बाहर आके अल्टर बंद कर दिया, दरवाजा बंद कर दिया, फिर से दो मिनट में खोल के फिर से वो भक्त अंदर गया पुजारी, और हर दो मिनट में अंदर जा रहा था। प्रभुपाद बोले अरे क्या चल क्या रहे, ऑफरिंग किया है तुमने, अभी थोड़ा 15-20 मिनट रुको, बार बार क्यों अंदर जा रहे। तो तो बोले आपने पिछले टाइम कहा था कि जैसे आप सबसे प्रिय व्यक्ति जो है वैसे सर्विंग करते वैसा करना चाहिए, तो हमारे सबसे प्रिय हमारे लाइफ में आप है और आपको हम कैसे सर्विंग करते हैं, गरम गरम फुल्का हॉट। तो भगवान को भी हम डायरेक्ट फायर से हॉट फुल्का ऑफर करते हर दो मिनट में। अच्छा है आपका प्रेममयी भक्ति, अच्छा है लविंग डिवोशनल सर्विस, बट उसके भी कुछ नियम होते हैं। तो भगवान को एक बार भोग लगाने के बाद भगवान अकेले खाना चाहते, तो उनको 15-20 मिनट छोड़ो, वैसे वो खाएंगे गरम करके। तो आप इतना, तो प्रभुपाद खुश थे, लेकिन प्रभुपाद ने बोला कि हमें क्या है, वी हैव टू फॉलो व्हाट आर द स्टैंडर्ड्स ऑफ पंचरात्रि का विधि। तो प्रेम भक्ति के काफ़ी उदाहरण है भागवतम में। तो एक शिक्षाष्टंग प्रभु का लेक्चर सुन रहा था मैं, तो इसमें गोपाल चंपू में बहुत ही बढ़िया एक किस्सा बताते हैं कि जीव गोस्वामी इसका डिस्क्रिप्शन करते हैं कि कैसे व्रजवासी दे आर द टॉप मोस्ट ऑफ ऑल डिवोटीज हु डू लविंग डिवोशनल सर्विस। लविंग डिवोशनल सर्विस जो प्रेम में भक्ति है उसमें टॉप मोस्ट जो है व्रजवासी। तो उसके लिए जीव गोस्वामी गोपाल चंपू में इसका डिस्क्रिप्शन देते हैं कि कैसे जो व्रजवासी थे भगवान कृष्ण से कितने अटैच थे, कितने आसक्त थे कृष्ण बलराम से। तो जब कृष्ण बलराम छोटे थे तभी जैसे गार्ग मुनि आके उनका नामकरण करते हैं और तभी उनको कहते हैं नंद महाराज को कि ये कृष्ण जो है वो पहले वसुदेव के पुत्र थे, पहले बोलते हैं। तो फिर नंद महाराज को लगता है पहले यानी पिछले जन्म में। तो गर्ग मुनि कहना चाहते सच भी, लेकिन डायरेक्ट कहने भी नहीं सकते। तो नंद महाराज के मन में था कि हाँ पहले यानी पिछले जन्म में, और जो कृष्ण क्या है ऑलमोस्ट लाइक अ नारायण, इज ऑलमोस्ट लाइक नारायण उनको कहते हैं। तो ये हमेशा नंद महाराज के मन में था कि पिछले जन्म में वसुदेव के पुत्र थे। तो जब भगवान 10.5 साल के होते हैं और जब उनको टाइम आता है वृंदावन छोड़ के मथुरा जाने का, तो जब अक्रूर जी आते हैं वहां पे रथ लेके, तो तब अक्रूर नंद महाराज को कहते हैं कि कृष्ण जो है वसुदेव के पुत्र है और उनको अभी मथुरा आना है। तो नंद महाराज को याद आता है बरो और वसुदेव के पुत्र थे पिछले जन्म में, ठीक है। तो तभी कृष्ण को लेके, कृष्ण और बलराम को लेके अक्रूर जाते हैं। तो तभी व्रजवासी इतने पीड़ित होते हैं और गोपियाँ और हमको तो पता है वो सब। तो तभी कृष्ण उनको वादा करते आयास से मैं जरूर जल्दी आऊँगा। तो कृष्ण बलराम को लेके अक्रूर जी आते हैं। तो फिर बाद में मथुरा में कंस का वध वगैरह होने के बाद अभी व्रजवासियों को फिर से भेजना है। तो ये इंसिडेंस गोपाल चंपू में जीव गोस्वामी इलाबोरेटली बताते हैं कैसे कृष्ण के लिए कितना बड़ा और कितना मुश्किल था नंद महाराज को फिर से भेजना। तो दिल पे पत्थर रख के, तो यहाँ पे तो नंद महाराज को बुलाते हैं कृष्ण, सब होने के बाद, सब कंस का वध वगैरह सब होने के बाद फिर नंद महाराज को बुलाते हैं प्राइवेट में और कृष्ण बोलते हैं कि ये जो यदुवंशी है वो बता रहे हैं कि जो भविष्यवाणी हुई थी उसमें बताया था कि 8वां पुत्र वसुदेव का और देवकी का वो कंस का वध करेगा। तो ये लोग यदुवंशी कह रहे हैं कि मैं वसुदेव का पुत्र हूँ। तो अभी नंद महाराज इतने भोले हैं तो वो क्या कहते हैं, अरे वाह ये तो बड़ी भाग्य की या गर्व की बात है कि वसुदेव अब आपको उनके पुत्र मानते हैं। क्योंकि जैसे एक कोई एकदम गरीब गांव का लड़का है और उसको कोई बड़ा व्यक्ति अंबानी बोलता है कि ये मेरा पुत्र है, तो वो पिता को लगेगा अरे बड़े भाग्य की, बड़े गर्व की बात है कि अंबानी कह रहा है कि ये मेरा पुत्र है। तो ऐसे नंद महाराज बोलते हैं कि ये तो हमारे गर्व की बात है कि वसुदेव आपको पुत्र मानते हैं। तो कृष्ण सोचते हैं अरे समझा नहीं इनको, तो बोलते हैं कि ये जो यदुवंशी है वो मुझे छोड़ नहीं रहे, मुझे आने नहीं दे रहे वृंदावन में, तो क्या करूं। तो नंद महाराज बोलते हैं ऐसा है क्या, तो मैं यहाँ पे आके रह लूँगा मथुरा में, मैं यहाँ पे आता हूँ फिर रहने के लिए। कृष्ण बोलते अरे, तो फिर बोलते हैं कि आप कैसे रहेंगे, ये तो शहर है, मथुरा एक शहर है, और इधर कैसे रहेंगे, कहाँ पे रहेंगे, इधर कैसा अरेंजमेंट होगा। तो नंद महाराज पूछते हैं तुम कैसे रहोगे। कृष्ण बोलते हैं मेरे लिए तो वो अरेंजमेंट कर देंगे, मैं अभी यदुवंशी बोल रहे हैं तो वो मेरे लिए कुछ स्पेशल अरेंजमेंट कर देंगे, लेकिन आप कहाँ पे रहोगे। नंद महाराज बोलते हैं मैं रह लूँगा वो मथुरा के आजू बाजू में, थोड़ा बाहर कहीं पे कुटिया में रह लूँगा मैं अपना बना के, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो कृष्ण ही इज ट्राइंग टू कन्विंस दैट कि आप चले जाओ और मैं आ नहीं सकता, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं कह सकते ना। तो फिर कृष्ण बोलते आप अगर मथुरा में रहोगे तो वृंदावन में यशोदा है, यशोदा मैया, उनका ख्याल कौन रखेगा। नंद महाराज बोलते अगर मैं यहाँ पे रहूँगा तो वो भी यहाँ पे रहेंगी ना, हम दोनों रहेंगे हम दोनों आके रहेंगे मथुरा में। कृष्ण बोलते अरे, बोलते देखो हम ग्वाले हैं और हमारा धर्म क्या है, गायों की रक्षा, और इतने सारे 9 लाख गैया है हमारे पास वृंदावन में, और इधर गोचारण भूमि नहीं है मथुरा में, तो आपको वृंदावन में ही रहना पड़ेगा। तो भगवान ऐसे कहते हैं, तो नंद महाराज बोलते हैं कृष्ण आपको क्या लगता है आपके बिना गैया चरने को जाएंगी। कृष्ण बोलते हैं हाँ वो भी सही है। तो एक सखा का नाम लेते हैं कृष्णा, ये सखा थोड़ा बहुत मेरे जैसे दिखता है उसको भेजो गैयों के साथ, और गैया सोचेंगी कि ये कृष्ण है और वो जाएंगी चरने के लिए। नंद महाराज बोलते गैया इतनी मूर्ख नहीं है, उनको आपका गंध पता है, फ्रेग्रेंस कृष्ण का, वो गंध से पहचान जाती है कि कौन है। तो कृष्ण बोलते ठीक है मैं मेरे कपड़े दे देता हूँ, मेरे कपड़े लेके जाओ, वो गोपक गोप जो है उसको पहनाओ और वो लेके जाएगा गैया को। तो ऐसे कैसे तो भी सम हाउ कृष्ण ट्राइज टू कन्विंस नंद महाराज कि आप फिर से जाओ। और एक बात कहते हैं जो कि जीव गोस्वामी कहते हैं कि सबसे डिफिकल्ट थी कृष्ण को कहनी है नंद महाराज को, तो वो बोलते हैं कि देखो आप जाइए फिर से वृंदावन में और मथुरा में फिर से मत आओ, बार बार मत आओ। क्यों? क्योंकि मेरे जो मैं यहाँ पे रह रहा हूँ मथुरा में यदुवंशों के साथ, तो यदूज के जो शत्रु है अभी वो मेरे शत्रु है, और अगर आप यहाँ पे बार बार आते रहेंगे तो वो आप पे भी अटैक करेंगे वहाँ पे वृंदावन में, तो इसलिए आप यहाँ पे मत आओ। और उधर जाके सभी व्रजवासियों को कहो कि वो भी यहाँ पे मत आए, और हमारा जो संबंध था वो एक काल्पनिक संबंध था, ऐसे सोच के उनको बोलो भूल जाओ। तो ऐसे कहते सोचिए कितना डिफिकल्ट है। तो टेल द व्रजवासी दैट वी वेर जस्ट गेस्ट, हम जैसे एक कृष्ण बलराम हम दोनों एक गेस्ट करके आए थे, कुछ साल रहे आपके साथ, लेकिन हमारा संबंध जो है वो तथाकथित टेम्पररी संबंध था, उसको आप सब भूल जाओ करके तो ऐसे सबको बता दो। नंद महाराज को शौक लगता है, और फिर जब नंद महाराज चले जाते हैं तो कृष्ण बहुत रोते हैं मथुरा में। तो कृष्ण इतना रोते हैं उधर, तो जीव गोस्वामी कहते हैं कि जैसे जब गोवर्धन पर्वत को उठाने में इतना भार भगवान को नहीं लगा था, लेकिन आज उनको इतना भार लग रहा है उससे कई गुना ज़्यादा, कि अभी सब चले गए, नंद महाराज चले गए, व्रजवासी सब चले गए, अभी वो है कृष्ण बलराम और बाकी यदुवंशी। तो एक तो कृष्ण भगवान जो है बलराम को आलिंगन करते हैं, और वो आलिंगन में उनको वृंदावन की याद आती, क्योंकि बलराम ही एक जो व्यक्ति है जो कि वृंदावन से थे। फिर बाद में यदुवंशी उनको वसुदेव के भवन में लेके जाते हैं कि जो बहुत बड़ा आलीशान भवन है, अभी कृष्ण बलराम जो कि नंद भवन एक छोटा एक गांव का गांव में रहे हुए, अभी ये बड़ा आलीशान महल में उनको अलग लग रहा है, होम सिकनेस, जैसे हम बचपन में स्कूल जाते थे, पहले बार स्कूल जाते हैं तो कैसा अलग लगता है स्कूल में, कब घर जाएंगे फिर से है कि नहीं, कि स्कूल में सब अलग, अरे मुझे नहीं जाना है स्कूल मुझे याद है मैं जब पहले बार स्कूल में गया था तो बाद में घर आने के बाद रात को 12 बजे उठा मैं, तो बोला मुझे नहीं जाना है अगले दिन स्कूल, तो मेरी माँ उठी और एक था छापड़ दिया, सो जाओ स्कूल में एक अलग लगता एडजस्ट नहीं हो पाते। तो वैसे ही कृष्ण बलराम का वो वसुदेव के भवन में, इतने बड़े भवन में उनको अलग लग रहा था, उनको वृंदावन की बहुत याद आ रही थी। तो कभी कभी देवकी को वो यशोदा मैया कहते थे और वसुदेव को नंद महाराज कहते थे, और जब भी देवकी उनको 56 भोग का प्लेट देती थी तो बोलते थे व्रज रोटी कहाँ है, मुझे व्रज रोटी चाहिए, तो ऐसे वो बर्ताव करते थे। और कृष्ण बलराम हमेशा वृंदावन की लीला के बारे में बात करते थे, तो उधर का एटमॉस्फेयर थोड़ा सा मथुरा का टेंस होने लगा था। तो सब सोच रहे थे यदुवंशी कि इनको क्या कैसे करे, समझाए कैसे, इनको तो वृंदावन का एक पागलपन लगा है, वो कैसे भुलाए। तो वसुदेव सोच रहे थे कि क्या करे, ये कैसे भूल जाए। तो फिर उन्होंने सोचा, सब यदुवंशी को कहा कि मैं क्या करता हूँ, इनको दोनों को कुछ दिन वृंदावन लेके जाता हूँ और फिर थोड़ा सा वहाँ पे रह लेंगे और फिर वो ठीक हो जाएंगे, फिर लाता हूँ फिर से। तो यदुवंशी बोलते हैं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, अगर कृष्ण फिर से जाएंगे वृंदावन तो अभी लौट के आएंगे नहीं, क्योंकि सब काम हो गया, कम से कम वध हो गया, अभी फिर से क्यों आएंगे, तो नहीं लेके जा सकते। वसुदेव को मना करते हो, तो वसुदेव सोचते फिर क्या करना चाहिए। तो फिर वो सोचते कि फिर रोहिणी को बुला लेते, तो मैसेज भेजते हैं रोहिणी को कि आप मथुरा आ जाओ। तो फिर रोहिणी यशोदा के पास जाती है और रोने लगती है कि मुझे अभी उधर जाना पड़ेगा मथुरा, तो मैं क्या करूँ। तो यशोदा बोलती है तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए। और यशोदा बहुत अच्छे अच्छे पकवान जो कृष्ण और बलराम को अच्छे लगते हैं वो बनाती है, और बनाने के बाद उसको स्पर्श करती है और रोहिणी को कहती है कि ये अब कृष्ण बलराम को दो, और उनको तुरंत समझ में आया कि मैंने बनाया क्योंकि मेरा हाथ का गंध है उसमें। और फिर यशोदा रोहिणी को आलिंगन देती है और बोलती है कि ये आलिंगन तुम कृष्ण को देना। तो ऐसे फिर रोहिणी आ जाती है मथुरा में। तो जब कोई भी वृंदावन से आता था तो यदुवंशी थोड़े अलर्ट हो जाते थे, ये क्यों आ गए उनको लगता था कि फिर से कृष्ण को लेके जाने के लिए आ गए। तो जब रोहिणी आई तो यदुवंशी सोचने लगे क्यों आ गए, थोड़े तो एटमॉस्फेयर थोड़ा अलग। तो रोहिणी ने सोचा कि ये बहुत ही खतरनाक एटमॉस्फेयर इधर तो उसने सोचा कि अभी मैं क्या करती हूँ कि वृंदावन और व्रजवासियों के बारे में उनका गुणगान करती हूँ, ताकि ये यदुवंशियों को पता चलेगा कि ये कृष्ण बलराम को कितना आकर्षण है उनके प्रति, तो इनको भी थोड़ा आकर्षण हो जाएगा, तो एटमॉस्फेयर थोड़ा ठंडा हो जाएगा। थोड़ा कल्पना कीजिए कैसे गोपाल चंपू में सब लिखा है। तो फिर रोहिणी जो है वृंदावन व्रजवासियों की उनका गुणगान करती है कि कैसे उनका प्रेम, प्रेम में भक्ति उनकी, दे आर द टॉप मोस्ट। और जब गुणगान करती तो यदुवंशी नाराज हो जाते, बोलते हमको लगा तुम हमारे साइड से हो, तुम तो उनके साइड से हो, क्योंकि रोहिणी तो यदुवंशी में है ना, व्रजवासी थी लेकिन वो यदुवंशी थी, तो उससे भी बात बनी नहीं। और कृष्ण बलराम जब सुनते हैं रोहिणी से वृंदावन के बारे में तो और वो उत्सुक हो जाते हैं, वो सुबह बोलते अरे क्या करना चाहिए। तो कृष्ण बलराम अभी 11 साल की छोटे बच्चे, तो शिक्षाष्टांग प्रभु बोलते कि ये जो यदुवंशी और व्रजवासियों में एक मीठी अनबन इंग्लिश में इसको बोलते एस्ट्रेंज रिलेशन, एस्ट्रेंज ये वर्ड आता है जब किसी दो व्यक्ति में अच्छा संबंध है, प्रेममय संबंध, लेकिन किसी कारण के वजह से थोड़ा सा वो कड़वा हो जाता है, कड़वाहट आ जाती है, उसको एस्ट्रेंज बोलते हैं। तो ऐसा हुआ था यदुवंशी और व्रजवासियों में। तो फिर वसुदेव सोचते हैं ठीक है, इनको क्या है, ये गांव में पले बड़े हैं ना, तो इनको गांव का सेटिंग चाहिए, तो इनको गुरुकुल में भेजते हैं। तो उधर गुरुकुल में गांव का सेटिंग है और उधर वो रहेंगे, सीखेंगे सांदीपनी मुनि से, तो वो सब भूल जाएंगे। तो फिर उनको कहते हैं कृष्ण बलराम को कि आप उज्जैन गुरुकुल में जाओ और उधर पढ़ के आ जाओ। तो कृष्ण बलराम बोलते हैं ठीक है, लेकिन कृष्ण बोलते हैं कि मैं जाऊंगा तो मैं पैदल जाऊंगा। है पैदल इतना दूर उज्जैन मथुरा से क्यों? लेकिन वो बोलते हैं क्योंकि अगर आप मुझे रथ वगैरह सब ऐसे भेजेंगे तो लोगों को पता चलेगा कि मैं मथुरा में नहीं हूँ, तो जो दुश्मन है आपके यदुवंशी के वो अटैक करेंगे, तो इसलिए मैं चुपके से पैदल, हम दोनों पैदल चले जाएंगे। तो पैदल चले जाते हैं गुरुकुल उज्जैन में। और हिस्ट्री में सबसे पहला क्रैश कोर्स वो करते हैं, क्रैश कोर्स 64 डेज में क्रैश कोर्स कर लेते हैं। तो अभी जीव गोस्वामी कहते हैं कि कैसे भगवान जो है कितने भावना से युक्त है कि जब वो गुरुकुल में जाते हैं तो वहां पे कृष्ण को वसुदेव और देवकी से भी वियोग होने लगता है। कि पहले तो नंद महाराज और यशोदा से उनसे वियोग हो रहा था, उनके उनके वजह वियोग में रो रहे थे, अभी वसुदेव और देवकी से भी वियोग होता है और उनके वियोग में रोते हैं। तो जीव गोस्वामी कहते हैं कि कृष्णा इज फुल ऑफ सेंटिमेंट्स, इज नॉट सेंटिमेंटलेस, इज फुल ऑफ सेंटिमेंट्स भगवान। तो उधर भी बलराम फिर उनको सांत्वना देते हैं। और तो दिन में तो वो सीखते हैं, लेकिन रात में वो दोनों जो वृंदावन में लीला होती है उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो फिर वहां से जब आते हैं दोनों फिर से मथुरा, तो फिर कृष्ण उद्धव को भेजते हैं वृंदावन कि आप जाओ और जो व्रजवासी है इतने मेरे वियोग में तड़प रहे उनको थोड़ा सांत्वना दो। तो फिर उद्धव को कृष्ण बोलते हैं कि जो मेरे माता पिता है नंद महाराज और यशोदा और जो गोपियां है उनको जाके सांत्वना दो। तो अभी जीव गोस्वामी कहते हैं कि कृष्ण ने ऐसा क्यों कहा कि सिर्फ जो मेरे माता पिता है और जो गोपियां है उनको सांत्वना दो, बाकी के भी तो इतने सारे व्रजवासी है उनको सांत्वना नहीं देनी है। तो उद्धव को सिर्फ इनके बारे में बताए, गोपियां जो है और नंद महाराज और यशोदा। तो जीव गोस्वामी कहते हैं कि वृंदावन में तीन प्रकार के भक्त है, जिनका भगवान के साथ जो संबंध है उसमें लालसा है, लालसा उत्कंठा या लालसा। सेकंड कैटेगरी है घनिष्ठ परिचय और थर्ड है विवेकहीनता। तो लालसा जो है जिन भक्तों को उसमें उस कैटेगरी में आते हैं गोपिया और नंद महाराज यशोदा। दूसरे कैटेगरी में घनिष्ठ परिचय है जो गोप है काउहर्ड बॉयज, और विवेकहीनता है जो काउज। तो इसलिए जो तीसरे और सेकेंड कैटेगरी में जो है जो गैया है और जो काउहर्ड बॉयज है उनको भगवान अंदर से स्फूर्ति दे रहे थे और उसके वजह से उनको लग रहा था कृष्ण है, कृष्णा इज देयर इन वृंदावन। तो जो गोप है और जो गैया है विवेकहीनता है, उनको इतना समझ में नहीं आता था क्योंकि अंदर से स्फूर्ति इतनी हो रही थी तो उनको लगता था कृष्ण गए हैं बाहर लेकिन वृंदावन में भी है, इसलिए गोप और गैया जो है उनको ज्यादा सेपरेशन नहीं हो रहा था। लेकिन सेपरेशन किसको हो रहा था? जो फर्स्ट कैटेगरी में लालसा, तो गोपिया और जो नंद महाराज यशोदा, तो उनको इतना उनको भी स्फूर्ति हो रही थी लेकिन उनका जो सेपरेशन था इतना था कि एक बाढ़ की तरह, तो स्फूर्ति से उनको कुछ सांत्वना नहीं मिल रही थी। तो इसलिए उद्धव को भगवान कहते हैं कि आप गोपियों को और नंद महाराज यशोदा इनको सांत्वना दो। तो ऐसे ही उद्धव फिर जाते हैं और वहां पे मिलते हैं व्रजवासियों से, उनको सांत्वना देते हैं। फिर उद्धव
बोल दे कि कृष्ण जरूर आएंगे एक दिन, चिंता मत करो, ही विल कम। और फिर उद्धव आ जाते हैं। फिर वसुदेव सोचते हैं कि अभी इनका थ्रेड सेरेमनी, थ्रेड सेरेमनी को क्या बोलते हैं हिंदी में, चनय संस्कार, वो करेंगे, उपनयन संस्कार, उपनयन संस्कार करेंगे कृष्ण बलराम का। तो कृष्ण सोचते ठीक है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम है एक, अगर उपनयन संस्कार करेंगे तो उसमें एक पिता को बैठना होता है साथ में, तो मेरे पिता के रूप में कौन बैठेगा, यहाँ पे बैठेंगे वसुदेव, तो यानी वो मेरे पिता करके हो जाएगा डिक्लेयर, वो मेरे असली पिता है, इसमें गड़बड़ है। तो फिर वो मैसेज भेजते हैं, बलराम मैसेज भेजते हैं वृंदावन में नंद महाराज को कि आप भी वहाँ पे इस दिन उपनयन संस्कार करो, जैसे कि हम दोनों वहाँ पे हैं और आप वहाँ पे उपनयन संस्कार करो और आप मेरे पिता के रूप में वहाँ पे बैठो, ताकि ये सिद्ध हो जाए कि आप ही मेरे असली पिता है। तो यहाँ पे भी होगा और वहाँ पे भी होगा, दोनों जगह पे होगा, लेकिन मुझे वसुदेव ही मेरे पिता है ऐसा मुझे आई डोंट वांट टू एक्सेप्ट, तो इसलिए ऐसे मैसेज भेजते हैं। फिर उस दिन दोनों जगह पे उपनयन संस्कार होता है। और फिर बाद में बलराम बहुत गुस्सा होते हैं कृष्ण पे, अरे क्या है तुम इतने दिन से जा नहीं रहे हो, मैं जाता हूँ वृंदावन, तुम नहीं जा रहे हो तो मैं जाता हूँ। तो बलराम भी हालांकि 11-12 साल के ही थे तभी, ज़्यादा बड़े नहीं थे, तो उनको भी परमिशन लेना पड़ेगा। तो वो फिर वसुदेव को पूछते हैं कि अगर आप कृष्ण को नहीं छोड़ रहे वृंदावन में तो मैं चला जाता हूँ। तो फिर मीटिंग होती है रोहिणी वसुदेव देव की, तो फिर बलराम कहते कि मैं जाके आता हूँ। तो बाकी सब यतुवंशी वगैरह सब बोलते ठीक है, बलराम कैन गो, कृष्णा कैन नॉट गो। क्यों? क्योंकि बलराम जो है वो यदुवंशी है पहले से, तो वो जाएंगे तो लौट के आ सकते हैं, लेकिन कृष्ण जाएंगे तो वो नहीं आएंगे। तो इसलिए बोले कृष्णा कैन नॉट गो, बलराम कैन गो। तो फिर रोहिणी बोलती है कि नहीं, उद्धव को भेजो, एक बार जाके आया उसको फिर से भेजो। तो उद्धव बोलता है मैं नहीं जाऊंगा, पिछले टाइम मैं जाके आया, उनको बोला था कि कृष्ण जरूर आएंगे जल्दी, अब तक आए नहीं, मैं फिर से जाऊंगा तो मुझे मारेंगे वो। तो फिर बलराम बोलते ठीक है मैं जाता हूँ। तो फिर तभी बलराम जाते हैं वृंदावन में, और फिर वहाँ पे जीव गोस्वामी बताते हैं कि जब बलराम जाते हैं वृंदावन में तो वहाँ पे इतना सब व्रजवासियों को कृष्ण बलराम से इतना सेपरेशन हो रहा था, तो वो एक एनालॉजी देते हैं, जैसे कभी कोई अग्नि है, तो अग्नि जब जलती है फॉरेस्ट में, एक जंगल में, तो हवा का झोंका जब आता है तो वो अग्नि और बढ़ जाती, कम नहीं होती। तो उसी तरह से जीव गोस्वामी कहते हैं कि जो व्रजवासियों का प्रेम कैसा था, एक अग्नि की तरह था, खासकर गोपियों का, और सेपरेशन इज लाइक द विंड, सो बिकॉज ऑफ द विंड, बिकॉज ऑफ द सेपरेशन, द फायर वॉज ओनली इंक्रीजिंग। तो हम भी सोचेंगे कि सेपरेशन में अगर हम भगवान की सेवा करेंगे तो हमारा भी फायर भक्ति का बढ़ेगा, लेकिन हमारा जो फायर है फॉरेस्ट फायर जैसा नहीं है, लेकिन एक कैंडल फायर जैसा है, तो हवा के झोंके से वो बुझ जाएगा सेपरेशन से। तो इसलिए सेपरेशन इंक्रीज द फायर ऑफ द गोपीज, लेकिन हम सेपरेशन में रहेंगे भगवान से तो हमारा फायर बहुत ही कम है, वो बुझ जाएगा। और जीव गोस्वामी दूसरा उदाहरण देते हैं कि जैसे वियोग में भगवान का जो प्रेजेंस है वो ज़्यादा गोपियों को लग रहा था, क्योंकि जब भगवान रहते थे वृंदावन में तो कृष्ण को एक जगह पे देखती थी, लेकिन जब कृष्ण नहीं है तो सभी जगह पे कृष्ण को देखती थी, तो दे वेर सीइंग कृष्ण एवरीवेयर, सो कृष्णस प्रेजेंस वॉज मोर फेल्ट इन सेपरेशन। तो ऐसे फिर बाद में बलराम जी ऑफकोर्स जाते हैं वृंदावन, वहाँ पे रासलीला करते और सभी व्रजवासियों को सांत्वना देते कि भगवान जरूर आएंगे एक दिन करके। तो ऐसे फिर बाद में फिर से आ जाते हैं, और फिर कृष्ण आखिर में जब दंत वक्र का वध करते हैं फिर तब जाते हैं वृंदावन में, और तब सभी व्रजवासियों को भगवत धाम लेके जाते हैं। तो ऐसा ये पूरा डिस्क्रिप्शन गोपाल चंपू में है, डिटेल में जीव गोस्वामी दिए। तो कैसे जीव गोस्वामी कहते हैं कि जो प्रेममय भक्ति में जो भक्त है, सबसे जो टॉप मोस्ट भक्त है, उत्तम भक्त है, वो है व्रजवासी, और उनका प्रेम उससे कंपैरिजन किसी का नहीं कर सकते। तो ये प्रेममय भक्ति के बारे में, सो लिटिल डिवोशनल सर्विस एंड लविंग डिवोशनल सर्विस, सो वी हैव टू राइज फ्रॉम लिटिल डिवोशनल सर्विस टू लविंग डिवोशनल सर्विस। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जाय, श्रील प्रभुपाद की जाय। गौर प्रेमानंद।